ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। अब तक 2009 की मुरलियां हम सुन रहे थे और आज से 2010 की मुरलियां सुनेंगे और जनवरी महीना 18 जनवरी का दिन ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस। तो स्मृति दिवस सो स्नेह दिवस सो समर्थि दिवस और आज बाबा ने एक और शब्द ऐड किया है सो ताजपोशी दिवस। जबकि बाप ने बच्चों की ताजपोशी की, सभी जानते हैं कैसे दादी प्रकाशमणि जी को हाथ और दृष्टि से सारे विल पावर्स दे दिए, तो बच्चों की ताजपोशी हुई और ब्रह्मा बाप और मम्मा दोनों कैसे बैकबोन बने, अर्थात सूर्य और चंद्रमा गुप्त हो गए और सितारों की रिमझिम चारों ओर फैली, बच्चों में वो सशक्तिकरण आया और दादी जी और उनके साथ सब दादियां कैसे उन्होंने मिलकर के इस यज्ञ को चलाया। तो आज की मुरली है 18 जनवरी 2010। तो बाबा हमसे अब क्या चाहते हैं, बाबा हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं, वो आज बाबा ने बताया। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 3/5/2026 है। ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए, ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए 18 जनवरी, जैसे 18 अध्याय पूरा हुआ। तो ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। कर्म योगी भी बनना है साथ साथ अशरीरी भी बनना है, कर्म करते हुए योगी और फिर कर्म योगी के साथ साथ अशरीरी। तो ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सारी मुरली का सार ये हेडिंग में आ गया। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। 18 जनवरी के दिन सब ब्रह्मा बाबा के स्नेह में समाये रहते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी, बच्चों के दिल में तो बाप की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हरेक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई है। कितनी तस्वीरें बाबा के दिल में समाई हुई है। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस, स्नेह दिवस, फिर समर्थी दिवस, फिर आगे बाबा कहेंगे ताजपोशी का दिवस। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले, बच्चे तो 3 बजे से ही कैसे बाबा की याद में खोए रहते हैं, अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। स्नेह के मोतियों की मालाएं बाबा ने देखी। अमृत वेले से पहले बच्चे उठ के बाबा को उस स्नेह से याद कर रहे थे। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है। क्या गीत बज रहा है? मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में ये गीत बज रहा है। कौन सा? बच्चों के दिल में गीत बज रहा है मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। आज हरेक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। 18 जनवरी पर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। ये परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। ये परमात्म स्नेह अनुभवी ही जाने। परमात्म स्नेह क्या होता है? बाबा कहते ये अनुभवी ही जाने। जो हरेक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार ही स्नेह है। कैसे सबने जन्म लिया अव्यक्त, ये अलौकिक जन्म? बाबा कहते आप सबके जन्म का आधार ही स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियां कम भी हो, है ना, सभी शक्तियां सब बच्चों में नहीं है और शक्तियां कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। और शक्तियां भले कम हो, लेकिन स्नेह की शक्ति सबके चेहरे पर दिखाई देती है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुंचाया? इतने सालों से बाबा के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बाबा पूछते हैं कि आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुंचाया? किस विमान में आए? विदेशी भी बहुत बैठे थे और भारत वाले भी बहुत बैठे थे, तो बाबा सबसे पूछ रहे हैं किस विमान में आए। मधुबन सब पहुंच गए हैं, तो किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए? सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है। तो कौन से प्लेन में आए, कौन से वाहन में आए? तो स्नेह के प्लेन से पहुंच गए ना। बाबा का प्यार सबको मधुबन ले आया, तो स्नेह के प्लेन में पहुंच गए ना। कुछ भी करना पड़ा, खर्चा करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए हो। और स्नेह का प्लेन ऐसा है जिसमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, वो उस प्लेन के लिए तो पैसा खर्च करना पड़ता है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थि दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष, ब्रह्मा बाबा ने, बाप दादा ने, उसमें भी विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया है ना, दृष्टि और हाथ द्वारा दादी प्रकाशमणि को सारी विल पावर्स दे दी। तो जैसे विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया, ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए, अननोन माना गुप्त हुए, और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया, बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। बने का शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों बैकबोन बन जाएंगे, रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, हड्डी बिना तो मनुष्य खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो बाप दादा ने कहा, अब बाप दादा रीढ़ की हड्डी बन गए और बच्चे आगे, हाँ, विश्व के आगे देखेंगे। तो बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने, अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया, और बाप दादा ने जो ताज, तिलक व वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। दादी प्रकाशमणि जी कैसे लीडर बनी और सबको कैसे आगे बढ़ाया और सब दादियों को साथ में लिया, ये भी दादी जी की कमाल थी। तो दादी और दीदी दोनों ने मिलकर ये पान का बीड़ा उठाया और देखो दादी जी और दीदी जी के सानिध्य में ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी गति से कितनी आगे बढ़ गई। जो देश तो क्या, विदेशों में भी कितने सेवा केंद्र खुल गए। तो बाबा कहते हैं, ये तो बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, ये देख बाप दादा खुश हैं। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, विदेश में भी चक्कर लगाया, हाँ, बाप दादा को सारी दुनिया में चक्कर लगाने में कितनी देर लगती है, तो विदेश में भी चक्कर लगाया, तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। 18 जनवरी का दिन तो सभी विदेश के सेवा केंद्र खूब धूमधाम से मनाते हैं, है ना, और कोई त्योहार इतना न भी मनाए मानो, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज होती है, लेकिन 18 जनवरी का दिन तो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, वीआईपीस को बुलाते हैं, योग तपस्या करते हैं। तो हर बच्चा, तो बाप द्वारा समर्थियां मिली है, क्योंकि ये दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, कोई कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं। अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं और शरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन अब अंतर क्या पड़ जाता, अमृत वेला तो बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है, दिन भर जो व्यवहार चलता है, सबके कांटेक्ट में आते हैं, तो कर्म योगी बनने का समय जब आता है तो दोनों काम और योगी, कर्म योगी ना, तो कर्म और साथ साथ योग, तो काम योगी का भी और कर्म का भी तो दोनों काम योगी का भी और कर्म का भी, ये दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। कर्म योगी माना कर्म और योग को अलग नहीं करना, दोनों साथ में हो, कर्म के साथ योग हो। लेकिन क्या बाबा ने देखा, दोनों काम योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। कर्म को अलग महत्व दिया, फिर योग को कम दिया, पर दोनों साथ साथ हो ये कम देखा बाबा ने। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है। मेहनत करनी पड़ती है कि कर्म के साथ योग भी हो, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है, क्या कह दिया बाबा ने सभी बच्चों को, कि विश्व का विनाश अचानक होना है, विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है, कर्म और योग साथ नहीं रखते, कर्म के समय योग भूल जाते हैं, तो बाबा कहते कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है, तो किसी भी धारणा में कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है। तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, वो तो बाबा नहीं बताएंगे, ये ड्रामा में है ही नहीं बताना कि बाबा बताए कि विनाश की डेट कब होगी, होना तो अचानक है। लेकिन क्या, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है ये मालूम है। आजकल हार्ट फेल बहुत सुन रहे हैं, अचानक बिल्कुल तबीयत ठीक थी, कुछ भी नहीं था, अचानक हार्ट फेल हुआ और मैसिव अटैक कहते हैं उसको, एकदम कई बार बार आना हार्ट अटैक, तो वो बचता नहीं है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है ये मालूम है। कोई को मालूम है, बाबा पूछ रहे हैं, कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है, है किसी को पता, बता दे। हाँ, बाबा ने हाथ उठवाया, मालूम है, हाथ उठाओ जिसको मालूम हो कि मेरी मृत्यु किस दिन आनी है, किसी को पता नहीं, लेकिन रिटर्न डेट तो है ना, भले डेट पता नहीं कौन सी डेट है, लेकिन रिटर्न की टिकट भी ले आए हैं साथ में। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितनों की मृत्यु साथ में हो जाती है, भूकंप आया अचानक, कितने कितने मर जाते, अचानक बाढ़ आई कितने मर जाते हैं। तो देखो, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितनों की मृत्यु साथ में हो जाती है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, मम्मा का बहुत बड़ा स्लोगन था, क्या स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो, लेकिन क्या कहो, अब अब नहीं तो कब नहीं, मम्मा कहती थी। तो कभी नहीं कब, कभी भी कब नहीं कहो अब। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना है। कल कुछ भी हो जाए मुझे एवर रेडी रहना है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। हाँ, किसने मम्मा से पूछा ना, मम्मा मैं तीव्र पुरुषार्थ कैसे करूं, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करूं। सिंपल प्रश्न है, कई सभी पूछते हैं। तो मम्मा ने क्या जवाब दिया, हर दिन समझो ये मेरा आखिरी दिन है, कल मेरी मृत्यु होनी है। तो क्या करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं, अपना कर्मों का हिसाब किताब चुकतू किया है, इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है, अपना कर्मों का हिसाब चुकतू किया है, चार ही सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा और सेवा, चार ही तरफ चारों में ऐसी तैयारी है, पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है, अपने दिल में ये चेक किया है कि एवर रेडी हूं, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। बाबा एक साल से ऐसा अनुभव बाबा से होता था, बिल्कुल न्यारे 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 प्यारे होते जा रहे। दादियों को भी देखा कैसे न्यारे प्यारे होते जा रहे। तो बाबा कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ ये वातावरण नहीं था कोई हिसाब किताब का। हाँ, किसी को कभी संकल्प में भी नहीं आता कि ऐसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ेंगे। कोई हिसाब किताब का, अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए ब्रह्मा बाप, उड़ गए आत्मा, उड़ गई। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले, दादी जी को भी नहीं लगा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं। बाबा बैठे थे अपने पलंग पर, टांगे नीचे थी और हाथ ऐसे थे, आंखें बंद थी, और दादी जी गए कमरे में 8:45-9 बजे के बीच में। क्लास करा के बाबा आए कमरे में, तो दादी ने सोचा अभी तो 8:45 ही हुए, नहीं तो देर से क्लास होता है, भोजन 7:30 होता, उस दिन 6:30 हो गया, सब कुछ बदला हुआ था। तो 8:45 थे, तो दादी जी को लगा मैं बाबा के कमरे में जाऊं और गुड नाइट करूं। तो जैसे दादी गई, देखा बाबा बैठे हुए हैं, टांगे नीचे हैं, आंखें बंद है और हाथ ऐसे है। तो दादी जी सामने खड़ी हुई, पर बाबा ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, आंखें बंद थी। तो दादी जी ने बाबा का हाथ पकड़ा, और जैसे हाथ पकड़ा तो बाबा ने आंखें खोली, और हाथ और दृष्टि, बस वो इंतजार था कि दादी जी आए और सब कुछ दादी जी विल कर दे, दादी जी को विल कर दे। बस एक सेकंड में आत्मा उड़ गई, और दादी जी ने अनुभव किया कि हाथ ढीले हो गए, अब हाथ ढीले हो गए, सिर थोड़ा झुक गया। तो बाबा को लिटाया, लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने तो यही कहा, ये तो आत्मा तो उड़ गई है। तो देखो दादी जी को भी कुछ समझ में नहीं आया उस समय। तो देखो, तो बाबा कहते हैं, कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहां कहां आकर्षण रहे, फरिश्ता बन गए। हाथ हाथ में था लेकिन बाबा कहीं भी आकर्षण नहीं, फरिश्ता हो गए, बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं उन्होंने अनुभव किया कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। तो ये जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, कर्म और योग को अलग कर रहे हैं करते हैं, तो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, उस समय देहभान में कर्म करते हैं, ये इमर्ज नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। ये तो सब जानते ही हैं कि मैं आत्मा हूँ, हाँ जानते तो हैं, पता है मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये समझना है। आत्मा तो हूँ लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, मैं करावनहार आत्मा हूँ। और ये कर्म इंद्रियां करणहार है, ये करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। मैं आत्मा करावनहार इंद्रियों कर्म इंद्रियों द्वारा कर रही हूँ, हाँ करा रही हूँ। ये करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे, चाहे कर्म इंद्रियों से कर्म कराना है लेकिन मैं करावनहार हूँ, मैं मालिक हूँ। करावनहार तो मालिक होता है ना। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्म इंद्री ऑर्डर में रहेगी, बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। कर्म इंद्रियां भी तब मानेगी जब आप करावनहार बनके इन कर्म इंद्रियों से करवाएंगे। तो कोई भी सीट पर सेट होने बिना किसका नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, ये कर्म इंद्रियां करणहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में ये अभ्यास किया तो रोज दिन की समाप्ति के समय, बाबा लौकिक की भी बात करते हैं कि ब्रह्मा बाबा लौकिक में जब थे बिजनेस में तो भगत तो थे ही, विष्णु की भक्ति करते थे, पर रोज रात को अपना पोता मेल लिखते थे और एक उनकी डायरी थी। वो कर्मचारियों को पूछते थे, मन से पूछते थे, अपनी इंद्रियों से पूछते थे कि आज कोई गफलत तो नहीं की, आज कहाँ पर कोई भटके तो नहीं, कोई गलत काम तो नहीं किया। तो बाबा ने वो बताया है, जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्म इंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने यह डायरी देखी होगी तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्म इंद्री का समाचार लेते थे और देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, जबकि अभी शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, पर बाबा पहले ही ऐसे करते थे। तो बाबा कहते हैं इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्म इंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, मैं आत्मा राजा हूँ। ये कर्म इंद्रियां साथी है तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार, स्वभाव कहो संस्कार कहो, इनों का क्या हाल रहा। सारा दिन ये कर्म इंद्रियां और फिर मन बुद्धि संस्कार कहो स्वभाव कहो, इनका क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कर्म इंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा, इंद्रियां सचेत हो जाएगी, उसको उनको पता है कि मेरा राजा आत्मा मेरा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा करणहार कर्म इंद्रियों से करावनहार बन चेक करो, कर्म इंद्रियों की चेकिंग करो, कर्म इंद्रियां करनहार की चेकिंग करावनहार बनकर करो। नहीं तो देखा गया है कि कई बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं कई बच्चे, कि हम कर्म इंद्रियों को ऑर्डर तो करते हैं लेकिन फिर हो जाता है, कोई ना कोई गलत काम हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई न कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते हैं। कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया ना, तो बाबा कहते हैं, फिर वो बाबा को कहते हैं कि पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहता। उसका कारण क्या कारण है उसका? उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते। क्यों ऑर्डर नहीं मानता? क्योंकि आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं रहते कि मैं राजा आत्मा करावनहार हूँ। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो, ऑर्डर करो, सीट पर अभी सेट नहीं हो, कितना भी ऑर्डर करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं है। अभी सीट पर सेट है तो ऑर्डर सब मानेंगे, पर रिटायर हो गए मान लो तो पूरी हुई ना वो नौकरी, पूरी हुई जो आपकी थी, और फिर ऑर्डर करो, कौन मानेगा? तो बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं है। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे ये भी बाप दादा से रूरियान करते हैं। क्या रूरियान करते हैं? बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान बनाया। सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते ही दिया है। ये वरदान हर ब्राह्मण बच्चे को सर्वशक्तिवान का जन्म लेते ही दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान? हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान किसने दिया है? ऑल माइटी अथॉरिटी ने, जो स्वयं सर्वशक्तिवान है उसने मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दिया है। लेकिन बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है, ऑर्डर मानती नहीं है, वो शक्ति ऑर्डर मानती नहीं है। ये क्यों क्यों ऐसे होता है? ऑर्डर करते हो सेंड शक्ति आ जाओ और सेंड कर ही नहीं पाते, दो का चार सुना देते हैं। हाँ, सैन शक्ति हो तो दो का चार नहीं सुनाएंगे ना, परंतु सैन शक्ति नहीं आती है, ऑर्डर मानती नहीं, शक्ति ऑर्डर नहीं मानती। वो क्यों? जब ऑल माइटी अथॉरिटी का वरदान है उससे बड़ा कोई नहीं है। अब ऑल माइटी अथॉरिटी ये वरदान दे और वो वरदान काम ना आए, उससे बड़ा अथॉरिटी कौन होगा जो देगा? इतने बड़े अथॉरिटी ने वरदान दिया, मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी हो, उससे बड़ा कोई नहीं। तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो क्या होगा? तो ये हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। ये हो ही नहीं सकता है कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, एक बात तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान भी मिला हुआ है, ये दोनों बातें हैं। एक तो वैसे ही आत्मा मालिक है और फिर उस सर्वशक्तिवान ने वरदान भी दिया है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दोनों है प्राप्ति है। उस स्वरूप में स्थित होके मैं मालिक हूँ और वरदान है मुझे, ये दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। मैं मालिक हूँ कर्म इंद्रियों का और भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उस स्थिति में स्थित रह करके ऑर्डर करो। आ जाओ सहन शक्ति, तुरंत आ जाएगी और आप दो का चार नहीं सुनाएंगे। तो स्थिति में रहकर ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव है। वो सहन शक्ति का ऑर्डर को ऑर्डर किया और वो नहीं माने, शक्ति नहीं आए, बाबा कहते असंभव है, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। ये शक्तियां भी आपकी प्रॉपर्टी है ना, खजाना है बाबा कहते हैं, और वरदान भी है, तो ये आपका अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते हो। टाइटल तो मिल गया है लेकिन उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते। चलो कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं रहते। कभी कभी आ जाता है, ये शब्द आ जाता है कभी कभी। ये कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। बाबा कहते विदेशियों को सम टाइम निकाल दो शब्द कभी कभी। ये कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर, कभी कभी नहीं, अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं, तो आप हाजिर हो जाते हो। बच्चे बाबा को कहते बाबा जब हम आपको याद करते हैं आप हाजिर हो जाते हो। बाबा की मदद का अनुभव होता है उसी समय, जैसे बाबा हाजिर हो गए और मदद किया। तो आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हो, है ना अनुभव सबको होगा। बाबा कहा और बाबा ने कैसे मदद किया, जिनको ये अनुभव है हाथ उठाओ भाई, सबको अनुभव है बिल्कुल। तो बाबा हाजिर हो जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तो हाथ उठाओ, अनुभव है ना। अभी देखो हाथ तो उठा रहे हो कि आपने बाबा कहा और बाबा की मदद मिली, तो हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता है, हजूर हाजिर हो जाता है, वो हजूर हाजिर हो जाता है। तो ये शक्ति क्या है? हाँ, ये शक्ति क्या है? शक्ति का आह्वान करो और शक्ति न आए। आप मालिक हो, आप तो वरदान है आपको, आप मास्टर ऑल माइटी हो, तो आपको ये शक्ति आपका न माने, ये शक्ति है क्या? आप तो उसके मालिक हो। तो ये शक्ति क्या है? ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है, तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो। हाँ, स्थिति खो जाती है, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो। तो मालिक ही नहीं है तो ऑर्डर क्यों माने? हाँ, उस सीट पर सेट होकर के ऑर्डर नहीं करते हो तो बाबा कहते हैं वो शक्ति क्यों माने, ऑर्डर क्यों माने? हाँ, मालिक ही नहीं है सीट पर तो ऑर्डर क्यों माने? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? क्या चाहते हैं बाप दादा पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है। अब राजा तो राजा ही है ना, ऐसे नहीं कि वो राजा कभी राजा न रहे, राजा माना राजा। तो राजा तो सारा दिन राजा ही होता है ना, या कभी राजा होता है कभी नहीं। भले सीट से समझो जो सिंहासन पर न भी बैठा हो पर चल फिर रहा है तो भी राजा तो है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वो अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूं ये तो नहीं भूलता है ना। अब महल में है शयन कक्षा पर है, अपने बिस्तर पर भी सोता है, तो राजा भी तो सोता होगा, पर ये थोड़ी भूल जाता है कि मैं राजा हूं। तो बाबा कहते हैं ये तो नहीं भूलता है, तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अमृत वेला योग तो बहुत शक्तिशाली होता है, पर दिन में जो कर्म योगी की स्टेज है, बाबा कहते हैं उसमें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डबल काम है। लेकिन आप कौन हो? कर्म और योग दोनों करना है, डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसीलिए बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता, कोई कर्म इंद्रिय ऑर्डर नहीं मानेंगी, मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर नहीं मानेंगे, क्योंकि सीट पर सेट नहीं है मैं कौन हूं। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं दुनिया में, सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, अपना हक कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। कोई भी काम करो उस समय अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। ये काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा? हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ, जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल भी फिक्स करो, मन का टाइम टेबल भी फिक्स करो। मालूम तो है कि इस समय ये काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है, ये काम करना है तो काम करते समय स्वमान कौन सा रखना है वो भी याद रखो। मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, ये मन का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि स्वमान तो मन में स्थित होगा ना, तो ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना, माताओं को आता है, माताएं टाइम टेबल बनाना आता है, माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, बाबा माताओं को समझाते हैं, अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपनी बुद्धि में इमर्ज कर रखना है, खाना बनाते समय कौन सा स्वमान बुद्धि में इमर्ज रखना है। बहुत माला है स्वमान की, कितनी लंबी लिस्ट है स्वमान की, इतनी बड़ी माला है, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ, आप ही समा जाओ उस माला में, इतनी लंबी माला है। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं, अब बाबा के पास बच्चों के संकल्प तो पहुंचते हैं, तो कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा अब तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है। अब उस समय 2010 में शायद नहीं भी लगता होगा, अभी तो कभी भी लग सकता है ना, अभी थोड़ा सीज फायर हुआ, 15 दिन अभी खत्म हो रहा है, तो फिर अभी क्या करेंगे, फिर लड़ेंगे क्या करेंगे, सब यही असमंजस में अभी क्या करेंगे। तो अभी तक तो विनाश का कोई दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, इसलिए कर लेंगे, अभी तो डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो कर लेंगे, कभी भी हो जाएगा। ये अलबेलापन है, संदेश देने में भी विश्व कल्याणी है, संदेश देने में भी तो विश्व कल्याणकारी है ना, हमारा टाइटल है विश्व कल्याणकारी। तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, आगे चल के संदेश दे देंगे, समय पड़ा है। लेकिन बाबा कहते नहीं नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वो भी आपको उलहना देंगे। अगर समझते हम पीछे संदेश देंगे अभी नहीं, तो बाबा कहते हैं वो पीछे अगर देंगे तो वो भी आपको उलहना देंगे। क्या उलहना देंगे? कहेंगे आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो हम भी कुछ कर लेते थे। अभी आपने लास्ट में बताया है तो हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला परम अपार यही कह सकेंगे, क्योंकि उस समय तो कुछ कर नहीं सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों क्यों पा नहीं सकेंगे? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए, बहुत समय का अभ्यास, उस समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हम वारिस है वो हाथ उठाओ। सब वारिस है, बाबा के वारिस बच्चे बैठे हैं तो सब हमने हाथ उठाया, तो वारिस है। हाँ, फिर बाबा पूछते हैं सबने हाथ उठाया वारिस है, वारिस है। अच्छा, अब बाबा फिर परीक्षा लेते हैं। अच्छा, वारिस है तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? जो समझते थोड़ा चलेगा, कोई बात नहीं, हाथ उठाओ। हाँ, कोई नहीं हाथ उठाएगा। तो वारिस है तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? तो सभी क्या कहेंगे? फुल वर्षा पाना है। तो फुल वर्षा माना, फुल वर्षा किसको कहते हैं? फुल वर्षा माना पूरे 21 जन्म, इस जन्म सहित पूरे 21 जन्म, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना। रॉयल प्रजा बनेंगे तो भी चलेगा नहीं, रॉयल फैमिली, राजा का जो परिवार है उस परिवार में आना, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे, युगल बैठेंगे, चलो एक बैठेंगे माना युगल बैठेंगे, लेकिन वहां की सभा जब भी लगती है, अब सत्यु की सभा कैसे होगी जब महाराजा महारानी सब जो अलग अलग राजाएं होंगे सबको बुलाते हैं सभा में, लेकिन वहां की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वो ताजधारी बन के बैठते हैं। रॉयल फैमिली के होंगे या और भी स्टेट्स के होंगे ना, छोटे मोटे राजाएं भी तो होंगे, तो वो भी तो ताज पहन के बैठेंगे ना, तो विशेष निमित्त आत्माएं वो ताजधारी बन के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। सब जो राजसभा होगी उसमें बिना ताज के नहीं बैठते हैं, ताज पहन कर बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। सबकी भी राय तो लेते होंगे ना, ऐसे थोड़ी है मैं जो चाहूं सो करूं, तो डिक्टेटरशिप हो जाए उसको तो एकदम, तो डिक्टेटरशिप तो वहां नहीं है, सबके सहयोग से सुखमय संसार है। तो राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसीलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाल मृत्यु तो वहां होती नहीं है, इसलिए पूरी पीढ़ी बाबा कहते हैं, आधे में भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाल मृत्यु तो होना नहीं है, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़े में खुश होना है? क्या करना है भाई? पूरा वर्षा लेना है या थोड़े में खुश होना है? आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा ये लक्ष्य रखती थी, बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वो हमें करना ही है। ऐसा ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा का भी सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा ये तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा अच्छा, अब बाबा के आगे विदेशी बैठे थे, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है ना। बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डरते थे, तभी तो सब सेंटरों पर सब आते हैं। बुद्धिस्ट भी कितने आते हैं, इस्लामी भी आते हैं, क्रिश्चियन तो बहुत ही आते हैं, तो इसीलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं आध्यात्मिकता में। पहले देखो, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डरते थे, अविनाश विनाश क्या कहती है, वो कहते थे ब्रह्मा कुमारी अविनाश विनाश कहती है, तो डरते थे आने में। और अभी क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा। पहले कहते थे ये विनाश विनाश करती है, इनके पास मत जाओ। अभी कहते आप बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करें। इसलिए होना तो है ये विनाश, ये तो गारंटी है। है कोई जिसको संशय है, शायद वो कहता है विनाश नहीं होगा, होना है, ये गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना कि विनाश होना है, या समस्त विनाश होना ही नहीं है, गारंटी है ना। बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ शब्द का भी समय गया, अभी क्या शब्द आना है, तीव्र पुरुषार्थ, केवल पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर भी नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। अच्छा अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाप समाया हुआ है। बाप के दिल में बच्चा समाया है तो मुबारक हो, मुबारक हो, और मुबारक के साथ नमस्ते भी। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो हो रही है, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो, हार्ड बना मजबूत, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न सके। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। अव्यक्तिशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो के अंतर्गत किसी भी वायुमंडल में रहो, कैसा भी वायुमंडल उसमें रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वो अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना। धैर्य से कहो इसको समझने की कोशिश करेंगे तब स्थिति एक रस अडोल अचल अडोल रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा का परिवार तो बहुत बड़ा है और रोज कोई न कोई का समाचार आता रहता है किसने शरीर छोड़ा, तो इसीलिए उस दिन भी समाचार आया कानपुर की दवाई नगर की एक बहन, वो सेंटर संभालती थी कि दवाई नगर का, उसने शरीर छोड़ा अचानक। अब ये दूसरा है सुरेश भाई, जो केरला कोची सेंटर पर 30 वर्षों से समर्पित था और पांडव भवन टेलरिंग डिपार्टमेंट में 25 वर्षों से सेवा में आते थे। सुरेश भाई ने कल दोपहर में 2 बजे अचानक हार्ट अटैक से अपना पुराना शरीर छोड़ा और बाबा की गोद ली। वो आता रहा यहाँ सपन भाई के पास, टेलरिंग में सेवा करता था, केरला का भाई था। सुरेश भाई 56 वर्ष के थे। ऐसी महान आत्मा को योग के श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। अच्छा, हम सब योगदान देंगे उस आत्मा को, बहुत सेवा करता था। सब जानते होंगे, जिन्होंने यहाँ कपड़े सिलाई कराए होंगे वो जानते होंगे। चलो उस आत्मा को योगदान